ओम शांति। स्वराज्य अधिकारी बाबा के नूरे रतन योग के प्रयोगों द्वारा बाबा को सारी दुनिया में प्रत्यक्ष करने वाले आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता भ्राता जी हमारे बीच में हैं। हम सभी उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाई साहब लगभग पिछले 27 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हुए हैं, ना केवल जुड़े हैं लेकिन इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है, प्रैक्टिकल स्वरूप बन के दिखाया है। आप MBBS, MD और अनेक आपने डिग्रीज प्राप्त की हैं। एस्कॉर्ट्स दिल्ली में बहुत बड़ा हृदय रोग का हॉस्पिटल है, वहां पर आप हृदय विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत थे। वहां से आपने अपना रिजाइन देकर इस ईश्वरीय यज्ञ में अपनी सर्विसेज सेवाएं देने के लिए 18 वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से अपने जीवन को समर्पित कर दिया और पिछले 18 ईयर्स से आप हृदय विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर के आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और विशेष हमारा जो कैड प्रोजेक्ट है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रोजेक्ट, उसके निमित्त बाबा ने आपको बनाया है। अनेक दिल वालों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे ऐसे भाई बहन जिनकी 90% आर्टरीज भी ब्लॉक थी, उनको जीवन दान देने के निमित्त बाबा ने आपको बनाया है। और केवल राजयोग, बाबा की किरणों द्वारा, हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट से, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ऑपरेशन के, उनको संपूर्ण रीति आपको आपने जीए दान देने के निमित्त बाबा ने आपको बनाया है। आपको अनेक अवार्ड्स और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें से कुछ एक हम बता रहे हैं। आपको 2008 में हमारी एक्स प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने एक्सीलेंस इन कार्डियोलॉजी अवार्ड 2008 में आपको दिया गया। आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया बाय हिज एक्सीलेंसी एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी इन 2006। आपको बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं और इस बार जो बाबा ने मुरली में कहा है, बच्चों का करना, जो बाबा ने कहा, बाबा का कहना और बच्चों का करना, और कैसे योग के प्रयोग द्वारा हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, भाई साहब आज इस विषय को हमारे बीच में बहुत अच्छे से साइंटिफिकली तरीके से क्लियर करेंगे कि कैसे हम योग को अपने जीवन में, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। आदरणीय भाई साहब द्वारा सुनेंगे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी।
ओम शांति। परसों 18 जनवरी को हमने सभी ने मीठे बाबा का प्यार का स्वरूप देखा। मुख्य बात जो बाबा की थी वो था, बाबा ने क्या कहा, क्या कहा, बाबा का कहना और बच्चों का करना एक समान हो जाना चाहिए। मम्मा का भी ये स्लोगन था ना, मम्मा नंबर वन कैसे बनी, जो बाबा ने कहा सुबह और मम्मा ने इसको शाम तक पूरा करके दिखाया, तो वो स्थिति हमारी कैसे बने, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। बाबा ने कुछ बातें और उस मुरली में कही थी, 18 जनवरी की मुरली में, सदा कभी कभी शब्द निकाल के हम सदा कर दें और संपन्न और संपूर्ण बन जाएं। तो आज हम फिर बाबा ने एक बात और उस दिन कही थी जो उस पर आज हम पत्र प्रकाश डालेंगे कि कैसे बाप की याद से, बाबा की याद से बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। भले हम फिजिकल दवाई भी खाते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, किंतु वो दवाई बिना विश्वास के और बिना दुआओं के इतना काम नहीं करती है। ऐसे हमारे पास हजारों अनुभव हैं जहां पर दवाइयां काम नहीं कर रही थी, किंतु जब उनको उन्होंने बाबा की याद को सीखा, बाबा की याद का जीवन में प्रयोग किया, तो वही दवाई उनकी काम करने लगी, वो ठीक हो गए। तो वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आज सभी मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, वो मन या तन से रोगी हैं। ठीक बात है? कोई ऐसा है जिसको मन या तन का रोग ना हो, हाथ उठाए। जिनको कोई भी रोग मन का भी नहीं है, तन का भी नहीं है, कोई भी मनुष्य ऐसा आज धरती पर नहीं है। सभी मन से या तन से रोगी हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। तो चलिए हम अगले 45 मिनट के लिए, क्योंकि आज 6:30 बजे इंटरनेशनल योग भी है, तो दादी जी आएंगे, हम सभी इंटरनेशनल बाबा के और सारे विश्व को सकाश भी देंगे, तो उसी की हम तैयारी करते हैं कि आज 45 मिनट में हम आगे ऐसी स्थिति हमारी बन जाए कि हम सारे विश्व को सकाश भी दे सकें। तो आज इसी बातों पर हम वैज्ञानिक विधि से भी, जैसे कि साइंस के हिसाब से, हमारी बहुत सहज विधि से कैसे हमारे जीवन का अंग बन जाए, हमें समझ आ जाए। क्योंकि महान बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ज्ञान की महीनता में जाना पड़ता है ना। क्योंकि बाबा की जितनी मुरली है ना, जितना बाबा की मुरली के महा, बाबा का कहना क्या है? ये मुरली ही बाबा का कहना है। बाबा ने कहा ना, मुरली बाबा का कहना है। तो जैसे आज हमने मुरली सुनी, इंतजार की बजाय इंतजाम करो, तो आज शाम तक हमको इंतजाम करना है ना। तो आज हमको करना है ना, वो क्या हमने किया? तो वो मुरली के एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, महावाक्य, वो गुह्य रहस्य से भरा हुआ है, उसमें बहुत गुह्यता है। तो उसका हमें मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण करते करते स्मृति स्वरूप बनते हैं, अर्थात हम उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाते हैं। तो ऐसे स्थिति हमारी कैसे बन जाए, कैसा हम ऐसा बन सकते हैं, और कैसा बन सकते नहीं, बनना है तो हम कैसे करेंगे, अगले 45 मिनट में इसको क्लियर करेंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगले 45 मिनट के लिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें और एकदम मन बुद्धि को एकदम एकाग्र कर दें। कोई आपस में बातचीत नहीं, कोई आपस किसी तरह का मन में संकल्प ना आए, उसमें सिर्फ मैं एक आत्मा हूं और बाबा का बच्चा हूं। मैं एक चमकता हुआ सितारा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं एक शाइनिंग स्टार हूं, ट्विंकलिंग स्टार हूं, मृत्यु के मध्य में हूं, और उसे सारी लाइट चारों तरफ फैल रही, सारी बॉडी में फैल रही है, और परमात्मा भी एक स्टार है, चमकता हुआ सितारा है परमधाम में, और उससे किरणें मुझ में आ रही है, लाइट आ रही है, और मेरे सारे शरीर में जा रही है, और मुझसे सारे शरीर सारी दुनिया में जा रही है। इस स्थिति में 2 मिनट बैठे, फिर हम शुरू करते। ओम शांति। आज का विषय बाबा का कहना और बच्चों का करना एक कैसे हो, अर्थात जो सोचा वो किया, यही तीव्र पुरुषार्थ का लक्षण भी है ना। सोचना और करना समान हो जाए, सोचना, बोलना और करना एक समान हो जाए, वो कैसे पॉसिबल है? आपने देखा अभी बाबा ने हमें परसों ही कहा कि बच्चे अभी सदा शब्द को जीवन में धारण कर लो, कभी कभी शब्द को जीवन से निकाल दो। तो अभी हम अगर पिछले 2 दिन का ही चार्ट देखें, तो क्या बाबा ने हमें कहा, क्या हमने किया, क्या हम कर पाए? बाबा ने कहा सदा विजयी स्वरूप बन जाओ, तो सदा विजयी स्वरूप बने, सदा बाबा की याद रही, आत्मिक स्थिति रही, क्या हम रह पाए? आप बताइए, क्या रह पाए? अपने आप को चेक करके देखो, क्या हम रह पाए? बाबा ने कहा, क्या हम कर पाए? बाबा हमें पिछले कितने सालों से, लगभग 44 साल से तो अव्यक्त मुरलियां, और उसके पहले साकार मुरलियां हम बाबा सुनते रहे हैं, रोज मुरली सुनते हैं। बाबा की मुरली ही श्रीमत है, बाबा की मुरली ही कहना है, पर क्या हम उसको कर पाते हैं और क्यों नहीं कर पाते? अगर हम, हमारे बच्चे या हम जहां पर हम रहते हैं, सेंटर पर रहते हैं या हम घरों में रहते हैं, हमारी हमारे सेंटर की बड़ी बहन या हमारे सेंटर की छोटी बहन भी कुछ कहती है, अगर हम कहीं मधुबन आते हैं कहीं, तो हमारे लिए लेके आना, हमारा एक काम आज शाम को जरूर करना। तुम उसका काम करते हैं ना? नहीं करते। माँ बाप भी जो लौकिक परिवृत्ति वाले हैं, वो उनके बच्चे होते हैं, कुछ कहते हैं पापा आज शाम को जरूर ये काम लेके आना मेरे लिए, तो वो कहते हैं हम करते हैं नहीं करते हैं? या नहीं करते, याद रखते हैं नहीं रखते हैं? कि आज उसने ये कहा था हमें, मुझे करना है। युगल भी होते थे घर में, ध्यान रखती आज मेरा पति मुझे कह के गया था मेरा युगल, तो मुझे शाम तक ये काम करके देना है। पति भी अगर काम पे जाता है वो शाम का ध्यान रखता है कि मुझे मेरी पत्नी ने कहा मुझे ये करना है। और बाबा तो पतियों का पति है ना? नहीं, कितना प्यारा है ना, कितना मीठा है, किंतु उनकी बात हम कैसे भूल जाते हैं? इसका क्या अर्थ है? क्या हम प्रैक्टिकल कर पाते हैं? क्या हम कर पा रहे हैं? क्योंकि इस जब तक हम इसकी बात की महीनता में नहीं जाएंगे तब तक हम कर नहीं पाएंगे। हमने कह तो दिया हम कर लेंगे, कर बाबा हाथ भी उठा दिया, हमने सभी ने हाथ उठाया, दो दो हाथ भी उठाया, हाथ भी हिलाया, बाबा खुश भी कर दिया हाथ हिला के। किंतु अब बाबा को तो रिजल्ट चाहिए ना, बाबा को तो प्रैक्टिकल रिजल्ट चाहिए, वो कैसे पॉसिबल है? अब इसको हम थोड़ा और गहराई में जाके हम देखते हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा। जैसे नॉर्मली अगर हम सत्युग में चले जाएं, हम एक पूरी कहानी को दोहराते हैं, पूरा सत्युग से लेकर के अभी तक, है ना, सत्युग में हम कैसे थे? सत्युग में हमारे अंदर सिर्फ संकल्पों की स्पीड क्या थी हमारी, हमारे संकल्प समर्थ थे, व्यर्थ जरा भी नहीं था, नेगेटिव तो था ही नहीं। आत्मा सतो प्रधान थी, सतो प्रधान माना आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो कि यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर और यहां से 3 इंच नीचे है, यहां नहीं है, इससे 2.5 इंच अंदर है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में है, एक चमकता हुआ बिंदु जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। और उसे 7 लाइट निकल रही है, उसे 7 एनर्जी निकल रही है, ऊर्जाएं निकल रही है, जिससे शरीर चल रहा है। और ये सतो प्रधान शब्द भी इसी 7 से आया है। सतो प्रधान माना 7, सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर। जब आत्मा 7 गुणों से भरपूर है तो सतो प्रधान है, और सतो प्रधान को ही पावन कहते हैं। पावन शब्द की डेफिनेशन क्या है? जब आत्मा इन 7 गुणों से या 7 ऊर्जाओं से, ज्ञान पहला ऊर्जा है, ज्ञान यहां से एक जैसे लहर जा रही है सारे शरीर में, अंग अंग में, एक एक कोशिका में जा रही है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं। और संसार एक ड्रामा है, नाटक है, इसमें सब आत्माएं एक्टर्स हैं और हर आत्मा कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, और परमात्मा इसका डायरेक्टर है, वो कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट इसको डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा हुआ। इसको बहुत सिंपल भाषा में कह सकते हैं, ABCD कह सकते हैं, A for आत्मा, B for बाबा, C for कनेक्शन, D for ड्रामा। तो ज्ञान सार रूप में ये 4 बातों में ही आ जाता है, ABCD में, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सर्जन बच्चा, जो भी हम संबंध देखना चाहें उसमें हमारे संबंध उसके साथ हैं। बाकी अपने जो लौकिक जो भी हैं या अलौकिक हैं उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, संबंध नहीं है। संबंध अनकंडीशनल होता है, उसमें शर्त नहीं होती है। और ड्यूटीज में जहां कर्तव्य में शर्त होती है, जैसे हम अपने बच्चों को भी युगल को भी क्या कहते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आप मेरे साथ हैं, हम आपको ये देंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मेरे साथ नहीं हैं, हम आपके साथ नहीं। आप कितने 25 साल 30 साल से निभा रहे हैं कि तो एक दिन भी आप नहीं करें तो बच्चे क्या बोलेंगे या युवक क्या बोलते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हैं। जबकि बाबा को 25 साल याद नहीं किया हमने बल्कि ग्लानी की, तो भी बाबा आके क्या कहता है, बाबा बच्चों के बगैर रह नहीं सकता है, बाबा बच्चों के दिल में और बच्चे बाबा के दिल में रहते हैं, बाबा का हर बच्चे से बेहद प्यार है, नहीं कहता है? हमारी बुराइयों को देखता है क्या? नहीं देखता है ना। तो वो अनकंडीशनल लव है, सदा है, एवर है। कर्तव्य जहां होता सदा लव नहीं, वहां ड्यूटी होती है, ड्यूटी मेरा करनी ही है, कुछ भी हो जाए करना ही है। तो ये जो है, इसलिए ये ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, अगर बाबा भी जैसे कोई हमें दुख दे रहा है ना, तो बाबा को हम बोले बाबा इसको बोलो दुख नहीं दे, तो बाबा उसको मना नहीं करेगा क्योंकि हमने दुख दिया हुआ है, इसलिए वो दुख दे रहा है। बाबा हमें सहनशीलता दे देगा ताकि हम सहन कर सके। जैसे कोई बाप बच्चे के बच्चा बच्चे से कोई बच्चे ने किसी से उधार पैसा लिया हो और उधार मांगने के लिए आए, तो बच्चा बाप को कहे पापा इसको मना कर दो ना, मेरे से पैसे नहीं मांगे, तो बाप उसको ये नहीं कहे इसको पैसे नहीं मांगे, बाप अपनी जेब से निकाल के उसको पैसे देगा, बच्चे इसको पैसे दे दो, ऐसे ही बाबा करते हैं। तो इसलिए ABCD जो है ना, ये ज्ञान यहां से, वो ज्ञान यहां से हमारी हर कोशिका पे उतरता रहता है। और इसी को शास्त्रों में कहा अनद नाद कहा गया। अनद नाद समझते हैं, अनद माना अनलिमिटेड साउंड, ना कभी ना खत्म होने वाले साउंड जिसके कारण शरीर चलता है। तो पहली जो है ज्ञान, सबसे बड़ा जो मुरली में भी हमने सुना ज्ञान सागर है बाबा, पहला जो बाबा की जो गुण है, जो बाबा का ज्ञान का सागर है ज्ञान, फिर पतित पावन है। तो जितना अधिक हम ABCD को रियलाइज करते जाते, इसको अपने जीवन में उतारते जाते, अपने आप से चिंतन करते जाते, उतना हमारे अंदर पवित्रता आती जाती। दूसरी एनर्जी इससे कनेक्टेड है, तो ज्ञान से फिर पवित्रता आती, पवित्रता से फिर शांति आती। शांति किसे कहते हैं? शांति माना विचार कम हो जाना, पॉजिटिव विचार कम होते हैं, और जब विचार कम हो जाते हैं तो हमें अपनी रियलाइजेशन आती, जो हम गलतियां करते हैं हमें रियलाइजेशन आती, फिर हम दूसरों की केयर करते हैं, उसे प्यार कहते हैं। किसी को हम प्यार करते हैं ना, प्यार कहते हैं, तो प्यार माना, प्यार का मतलब डेफिनेशन क्या है प्यार की, दूसरों की केयर करना, उसकी रेस्पेक्ट रखते हुए। अगर हम किसी की केयर तो कर रहे हैं, उसकी पालना तो कर रहे हैं, किंतु हमेशा से डांट मारते रहते हैं, तो उसको प्यार की अनुभूति होगी क्या? नहीं होगी ना। किंतु हम उसकी केयर, उसके रेस्पेक्ट रखते हुए, उसको आदर के साथ उसकी केयर करते हैं, तो उसको प्यार की अनुभूति होती है। और ऐसे प्यार से, ये रूहानी प्यार से कहते हैं, रूहानी प्यार, इस रूहानी प्यार से अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। अतिंद्रिय सुख माना इंद्रियों से ऊपर का सुख। एक इंद्रियों का सुख होता है देखने का सुख, बोलने का सुख, खाने का सुख, सुनने का सुख, छूने का सुख, सूंघने का सुख, है ना, ये इंद्रियों का सुख है। और अतिंद्रिय माना आत्मा का परमात्मा से मिलन का सुख, आत्मा के अंदर ये सुख के मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, मैं बीमार नहीं हो सकती, मैं मर नहीं सकती, ये बेहद का सुख, मैं कहीं भी जा सकती हूं। फिर इसकी अतिरेक सीमा को आनंद कहते हैं। और जब आनंद की अनुभूति होती है तो उस आनंद की अनुभूति के लिए हम उसको हम ठीक परखते हैं, जिस चीज में भी हमें आनंद आता है वो उसको हम परख लेते हैं कि ठीक है, ये राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। इसी के लिए निर्णय कर लेते हैं, इसी के लिए विस्तार को सार में समा लेते हैं, जैसे कछुआ समा लेता है, समेट लेते हैं, सहन कर लेते हैं, सामना कर लेते हैं, समा लेते हैं, सहयोग कर लेते हैं। तो 8 शक्तियां इससे निर्माण, इन 6 गुणों से 8 शक्तियों का निर्माण होता है। तो ये 7 गुण आत्मा में भरे हुए थे सत्ययुग में, आत्मा सतो प्रधान, पावन सतो प्रधान थी, अंग अंग में 7 एनर्जी फैली हुई थी। तो ये जो फीलिंग थी ना, आत्मा में आत्मा हूं, वहां आत्मा अपने को कहते नहीं हम लोग, वहां अपने को एक चमकती हुई ज्योति ऐसे फील होती है कि सारे शरीर में लाइट ही लाइट है। वो आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शांति, हमारे प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां हमारे रोम रोम से फूट रही होती है, दिखाई देती है। देवताओं का चेहरा देखो, उस नशे में डूबे हुए आनंद की स्थिति में है, परमानंद की स्थिति में है। उनके मन में कोई विचार नहीं चलता है। जो कार्य जिस समय करना है, अगर खाना खा रहे हैं तो खाने में ही डूबे, उसी का आनंद ले रहे हैं। घूम रहे हैं तो घूमने का ही आनंद ले रहे हैं, वो अपने ही आनंद में खोए हुए हैं। इसलिए उनका ऑरा, उनका आभामंडल बहुत बड़ा, जो सारी सृष्टि पावन तत्व प्रधान है, इसलिए आभामंडल नजर नहीं आता देवताओं का। अभी आभामंडल नजर आता है क्योंकि आसपास अंधेरा है। एक बल्ब की रोशनी कब नजर आती है? अंधेरे में नजर आती है। दिन में जलाओ तो नजर आएगी क्या? तो आज आभामंडल हमारा नजर आता है किंतु सत्युग में नजर नहीं आएगा, क्योंकि सारा सारा वायुमंडल ही सत्व प्रधान है, पावन सत्व प्रधान है, पांचों तत्व भी पावन सत्व प्रधान है। तो वो उस समय हमें एबीसीडी नहीं है, बस मैं आत्मा हूं, ये आत्मा बोलते भी नहीं है, किंतु वो स्थिति ऐसी फील होती है अंदर से, लाइट ए लाइट, लाइट हाउस हूं, माइट हाउस, भरपूरता की स्थिति अनुभव होती है। अंग भी सुखदाई है सारे, कंचन काया क्यों है? क्योंकि वहां धरती पर 50% ऑक्सीजन है, अभी धरती पर 20% ऑक्सीजन है, 20% ऑक्सीजन है तो भी हमारी स्किन लाल है, रेड है, चेहरा लाल है ना? और जब 50% ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, कितना लाल होगा? कोई बैक्टीरिया वायरस 50% रह नहीं सकता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस, छिपकली, कछुआ, ये जो होते हैं ना, जो कॉकरोच, मच्छर, मक्खी होते ही जिंदा ही नहीं रह सकते, सांप, ये सब कम ऑक्सीजन में रहने वाले प्राणी हैं। वहां तो ना बैक्टीरिया, इसलिए वहां बांस ही नहीं, बदबू ही नहीं किसी बात में भी। तो वहां एकदम हमारी बॉडी भी परफेक्ट है, मन भी सत्व प्रधान है, तीनों चीजें मन बुद्धि संस्कार तीनों सत्व प्रधान। बुद्धि सातों गुणों से भरी हुई है, मन में हमारी स्मृतियां यही है कि 100% के मैं आत्मा हूं, ट्रांसपेरेंट है हमारा मन। फरिश्ता माना जिसके मन ट्रांसपेरेंट हो, 100% कॉन्शियस माइंड। अभी हमारा मन कैसा है? 90% सबकॉन्शियस, 90% हमारा मन, बाकी 92% अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है। 8% मन ही कॉन्शियस है, चेतन है, बाकी अवचेतन और अचेतन मन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वहां मन पूरा 100% कंट्रोल में है। तो हमें एक संकल्प करना है ना, जो एक संकल्प हमें जो काम करना है वही संकल्प उठता है, जो ड्रामा में टच होता है, ड्रामा के अनुसार वो टच होता है। और एक मिनट में एक संकल्प उठा तो दो मिनट में कितने उठेंगे, बोलो, दो मिनट में कितने संकल्प उठेंगे? एक मिनट में एक, और दो मिनट में कितने उठेंगे? दो नहीं, एक ही उठेगा ना, वही संकल्प चल रहा है ना। वो काम मान लीजिए 15 मिनट मुझे करना है, खाना 15 मिनट खाना है, तो 15 मिनट वही संकल्प चलेगा ना, दूसरा संकल्प आएगा क्या? तो 15 मिनट में एक ही संकल्प चल रहा है ना, हम मैं हूं और खाना खा रहे हैं, है ना, उसी खाने का आनंद ले रहे हैं, मतलब अपना आनंद तो है ही कि तू खाने को भी बहुत एंजॉय कर, रास कर रहे हैं तो रास का ही आनंद ले रहे हैं, है ना, उसी उसी स्थिति में है। तो दूसरा काम 15 मिनट के बाद करना हो, फिर दूसरा संकल्प आएगा। तो वहां पर आत्मा है, किंतु आत्मा हम बोलते नहीं है, आत्मा का स्वरूप है। परमात्मा बोलते नहीं है किंतु परमात्मा का स्वरूप है। मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद और शक्तियों के सागर है। वहां संबंध के अनुभव, संबंध नहीं बोलते, वो पिता हमारा, हम उसके, वो हमारा माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, संबंधु, सखा, साजन, सजन नहीं, हम उसके अनुभूति को अपने द्वारा लोगों को दिखाते हैं। हमारे से हमारी प्रजा, हमारी जो परिवार में, रॉयल परिवार में रहने वाले भाई बहन, जो भी हमारे संबंधी होते हैं, हमारी प्रजा हमसे अनुभूति करती है। ये हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं, साजन भी, सब सज्जन भी, सब कुछ संबंध इनसे हम अनुभव कर सकते हैं। और ड्रामा, ड्रामा भी हमारा, ड्रामा के स्वरूप हो जाते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। कोई मर्ज, कोई शरीर छोड़ता है तो रोते नहीं है। तो ये सत्युग की हमारी स्थिति है। जब त्रेता युग आता है, 14 कला बनते हैं, तो आनंद की वजह खुशी, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति रह जाती है, आनंद खत्म हो जाता है, आनंद की स्थिति कम हो जाती है, और क्या बन जाता है? अतिंद्रिय सुख की अनुभूति में रहते हैं, नेक्स्ट स्टेज आ जाती है। और एनर्जी जो 100% थी वो बदल के 75% रह जाती है। 14 कल आ गए ना हम, और उसके बाद जब त्रेता, जब द्वापर युग का त्रेता का एंड आता है तो हमारी एनर्जी 50% हो जाती है। जब 50% एनर्जी होती है तो क्या होता है, संकल्प उसमें त्रेता में दो संकल्प आने लगते हैं, वहां एक संकल्प, यहां एक मिनट में दो संकल्प। जब एक मिनट में दो हुए तो दो मिनट में कितने हो गए, चार, है ना, तीन मिनट में छह और चार मिनट में आठ। तो इस तरह से वहां पर संकल्पों की स्पीड बढ़ती जाती है, इसलिए वहां युद्ध करना पड़ता है कार्यकर्ता। युद्ध माना हमारी स्थिति वो बढ़िया नहीं रहती है, इतनी बढ़िया नहीं, भरपूर नहीं, अनुभूति सुख की अनुभूति रहती है, पवित्र रहते हैं, किंतु तो लगातार वो आनंद की अनुभूति से कम हो जाते हैं। फिर जब द्वापर युग आया हमारी एनर्जी 50% रह जाती है। एनर्जी 50% से कम जैसी कम होती है, अगर आपको कुछ शेयर मार्केट का पता हो तो जो कंपनी होती है ना, जितनी भी कंपनी होती है, जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, वहां पर उनके शेयर लोग खरीदते हैं, और जिसके 51% शेयर होते हैं वो उस कंपनी का मालिक बन जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर भी वही होता है, ट्रस्टी भी वही होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी वही होते हैं, और उनका डिसीजन होता है। तो जब तक आत्मा सत्युग और त्रेता में है तो एनर्जी 51% से ऊपर, 50% से ऊपर है, तो आत्मा मन बुद्धि संस्कार और पांचों कर्मेंद्रियों का और आठों अंगों का मालिक है। किंतु जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ एनर्जी 50 से नीचे आई, 49 हो जाती है एनर्जी, सातों गुण, ज्ञान भी कम हो गया, पवित्रता भी, शांति भी, प्रेम भी, सुख भी, आनंद भी, शक्तियां आधे से कम होती है जैसे। तो नेक्स्ट कौन है आत्मा के बाद, नेक्स्ट शक्ति कौन सी है, मन। अब मन के पास एनर्जी 50% उसके बाद 51% आ जाती है, आत्मा के पास एनर्जी 49% और आत्मा मन के पास कितनी आ गई 51। अब मालिक कौन बन गया, मन, तो अब मन मालिक बन जाता है। अब एमडी कौन बन गया, मन बन जाता है। और मन क्या करता है, सत्युग में त्रेता युग में मन की पालना, बुद्धि की पालना, संस्कारों की पालना सातों गुणों से होती थी, आत्मा पालन, इसलिए आत्मा राजा थी, स्व माने आत्मा, राज्य आत्मा का राज्य था, स्वराज्य अधिकारी थी आत्मा, मन बुद्धि संस्कार से कंट्रोल में थे। अभी क्या हुआ, मन राजा बन गया। अब मन राजा बन गया तो आत्मा क्या बन गई, आत्मा पे कंट्रोल आ गया, क्योंकि उसके एनर्जी कम मिल रही ना आत्मा से, सात गुण कम मिल रहे हैं, और मन का कनेक्शन पांच कर्मेंद्रियों से रहता है, इनसे, आंखों से, नाक से, मुख से, कान से और त्वचा से। अब ये जो पांच कर्मेंद्रियां किससे कनेक्शन में रहती है, बाहरी दुनिया से कनेक्शन में, पांच तत्वों से कनेक्शन में रहती है, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी से कनेक्शन में रहती है, आसपास के जो हमारे इंसान, जो हमारे आसपास संबंधी होते हैं उनके कनेक्शन में रहती है। अब वो एनर्जी बाहर से लेना शुरू कर देती है, मन क्या लेना शुरू करता है, एनर्जी, ज्ञान। अब वो ज्ञान जो आत्मा से ज्ञान था वो कम आ रहा है, आत्मा का ज्ञान, वो एनर्जी कम आ रही है, तो बाहर का ज्ञान लेना शुरू कर देता है, आकाश में क्या है, सूरज में क्या है, वायु कैसे है, वायु कहां तक है, जल में, समुन्द्र में क्या है, धरती के नीचे क्या है, धरती के इधर क्या है, है ना, उसकी खोज, वो ज्ञान लेना शुरू कर देता है। मनुष्य कैसे हैं, उनके व्यवहार कैसे हैं, फिलॉसफी क्या है, है ना, तो वो ज्ञान लेना शुरू कर, पवित्रता, बाहरी पवित्रता, शरीर की पवित्रता को देखना शुरू कर देता है। शांति, जंगल की शांति ढूंढना शुरू कर देता है, जहां लोग कम हो, जैसे लोग बढ़ने लगते हैं, शांति बाहर की ढूंढना। प्रेम, संबंधों में प्रेम ढूंढना शुरू, बाहर प्रेम ढूंढना शुरू कर देता है। खुशी, खाने में खुशी ढूंढना शुरू कर देता है। आनंद, और चीजों में, लोगों से मिलने जुलने में आनंद, कई चीजों का, प्राप्तियों का आनंद ढूंढना शुरू कर। शक्तियां, फिजिकल शक्तियां, शरीर की शक्तियां, तो ये एक बाहर का साधन आना शुरू हो जाता है। और जब ये हम बाहर के साधन आने शुरू होते हैं, आत्मा की सातों एनर्जी कम शुरू होती है, तो शरीर में क्या शुरू होता है, बीमारियां आनी शुरू होती है, क्योंकि शरीर चलता किससे है, आत्मा की एनर्जी से। तो मनुष्य शब्द का मतलब ही क्या है, मनुष्य माना मन, उष्य माना मन के वश में। मनुष्य की डेफिनेशन ही क्या है, मन के वश में। तो सतो प्रधान सतो, अब रजो, रजो माना शाम, एनर्जी आधी हो गई, बीमारियां आनी शुरू होती, संकल्प बढ़ने शुरू होते हैं, क्योंकि विचार चलेंगे ना अपनी देह के संकल्प, देह पांच तत्वों की बनी है, देह के संकल्प चलेंगे, देह के संबंधों के संकल्प चलेंगे। देह का स्वभाव क्या है, देह का स्वभाव ही काम विकार है, ये पांच विकार जो है ना देह का स्वभाव है, स्वभाव माना नेचर। अपने को देह समझने से अपने आप ही काम विकार पैदा हो जाता है, दूसरे को देह देखने से काम विकार अपने आप पैदा होता है, क्रोध पैदा होगा, लोभ पैदा होगा, लोभ माना मैं चीज इकट्ठी करूं अपने देह के लिए, संबंधों के लिए इकट्ठी कर लूं, मोह ये व्यक्ति जो मेरी महिमा करता है मेरे पास ही रहे, सदा मेरे आसपास ही रहे, अहंकार जो प्रॉपर्टी जो हमने चीज इकट्ठी करी उसका अहंकार हो जाता है, ईगो हो जाती है, चाहे वो अंदर इकट्ठी की या बाहर इकट्ठी की। तो पांच विकार देह का स्वभाव है, और देह का संस्कार क्या है, देह का संस्कार है आलस्य। अपने को देह समझते ही आलस्य आना शुरू होगा, आज रात को हम चार घंटा ही सोए थे, थोड़ा तो मौका मिले तो सो जाएं, छोड़ो ना क्लास छोड़ देते हैं ना, क्लास तो बहुत सुन ली है ना, अमृत वेला बाद में चलो आज लेट कर लेंगे कोई बात नहीं, मुरली चलो बाद में कर लेंगे है ना, तो अलबेलापन आना शुरू हो जाता है ना, शक शुरू हो जाता है, अनुमान शुरू हो जाता है, दूसरे में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, ये देह का संस्कार आदत है, चिंता करना देह की आदत है, डर देह की आदत है, जल्दी प्रेशर में आना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, अपनी हैबिट्स का प्रेशर, ये काम ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैं कहता हूं ऐसा ही होना चाहिए, परफेक्शन, मैंने कहा इतने बजे ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये देह की आदत है, संस्कार है, ईर्ष्या करना देह की संस्कार है, आदत है, और देह के पदार्थ, ये चारों चीजें, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार और देह के पदार्थ, ये चारों चीजें क्या करती है, हमारी कॉन्शियसनेस हमारे दिल में उतर जाती है। दिल किसे कहते हैं, आत्मा का दिल, ये दिल तो फिजिकल दिल है, ये दिल जो सच्ची दिल, जो हमारी दिल आत्मा के दिल का है, जो आत्मा से एनर्जी निकल रही है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद और शक्तियां, ये जो आसपास एनर्जी लाइट रहती है इसको दिल कहते हैं, और इस सात गुणों से जो परखने की शक्ति पैदा होती है उसको विवेक कहते हैं, और फिर विवेक दिल और विवेक से जो मिलकर के जो हमें फिर निर्णय शक्ति पैदा होती है उसको बुद्धि कहते हैं, बुद्धि प्रॉपर कहते हैं, और उसके बाहर हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसको चित्त कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन, जो चीजें हमारी बुद्धि निर्णय दे देती है वो तो मेमोरी में चली जाती है, संस्कारों में चली जाती है, और जो चीजें बुद्धि कंफ्यूज रहती है वो सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, फाइलें अनसेव्ड फाइल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चित्त में रहती है, और मन उसके बाहर मन है, मन क्या है, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, जो जो कुछ हम कर देखते हैं सुनते हैं बोलते हैं खाते हैं करते हैं वो सब रिकॉर्ड होता है अंदर, उसको हम स्मृति कहते हैं, मन का पार्ट है, उससे हमारी वृत्ति बनती है, एटीट्यूड बनता है, और वृत्ति से वायुमंडल बनता है, वृत्ति से फिर भावनाएं पैदा होती हैं, जिसके प्रति जैसे हमारी वृत्ति वैसी भावना पैदा हो जाती है, और फिर जैसी भावना होती है ना भावना से वाइब्रेशन पैदा होते हैं, और फिर भावना से संकल्प पैदा होते हैं, जिसके प्रति हमारी भावना होती है ना उसके बारे में संकल्प चलते ही रहेंगे, बुरे संकल्प अच्छी भावना है तो अच्छे संकल्प चलते रहेंगे और बुरी भावना है तो बुरे संकल्प चलते रहेंगे। तो इस तरह से हमारा सूक्ष्म जो मन बुद्धि संस्कार है, हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं ना, यही हमारा सूक्ष्म शरीर है, आत्मा से वो तीनों लाइट निकलती रहती है, इस ज्ञान सात गुण निकलते रहते हैं, और उसके द्वारा मन बुद्धि संस्कारों का निर्माण होता है, और वही हमारा सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर की शेप जैसे बॉडी की शेप है ऐसी सूक्ष्म शरीर की शेप होती है, आत्मा सूक्ष्म शरीर अपने साथ लेकर के आती है और उसके द्वारा बॉडी को जैसे जैसे वो ग्रो करती है वैसे वैसे उसका फिजिकल बॉडी का निर्माण होता है, और सात गुणों की ही ये शरीर बनता है, उससे ही शरीर बनता है। मैं इसी बात पर आ रहा हूं, बाबा ने कहा और हमने किया, हमारा करना, जब हमारे संकल्प 15 हो गए, देह के कारण, देह के स्वभाव संस्कार के कारण, देह के पदार्थों के कारण, देह के संबंधों के कारण संकल्पों की संख्या बढ़ जाती है, तो हम तो 15 विचार सोचते हैं, 15 बातें एक मिनट में सोचते हैं। और बाबा के कितने संकल्प चलते हैं? शिव बाबा कितने संकल्प चलते हैं? शिव बाबा के संकल्प कितने चलते हैं? शिव बाबा कोई संकल्प नहीं चलता, जीरो। शिव बाबा निराकार है ना, परम धाम में रहता है, उसको कोई संकल्प नहीं चलता। परम धाम में संकल्प है क्या? वो संकल्पों से परे की दुनिया है। फिर सूक्ष्म बताने संकल्प हैं। ब्रह्मा बाबा कितना संकल्प चलता है? एक संकल्प, सिर्फ एक संकल्प। क्या संकल्प चलता है? मेरे बच्चे क्या हो जाएं, संपन्न और संपूर्ण बन के हम सात घर चलें, फिर सात राज्य में आए। एक ही संकल्प है ये बाबा का, और कुछ संकल्प जैसे बाबा ने कहा ना, इस मुरली में भी कहा ना, हम सात चलें, घर वापस जाएं और सात राज्य में आएं, ऐसा है ना। तो हमारे संकल्प 15 चल रहे हैं, 20 चल रहे हैं, 25 चल रहे हैं, 30 चल रहे हैं। अच्छा, ब्राह्मणों के संकल्प 15 ही चलते हैं, दुनिया वालों के संकल्प 25, 30, 40 भी चलते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में आने के बाद हमारे संकल्प 15 ही रह जाते हैं, किंतु बाबा के जो दूसरे बच्चे हैं उनके संकल्प बहुत चलते हैं। आप समझ रहे हैं? तो अब हमको बाबा का कहना और हमारा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कहते हैं ना, जो हमारे दिल में होता है ना उसकी बात हम तुरंत मान लेते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारी देह जो है ना, हमारे दिल में जाके दिल, हमारी देह जो है, ये देह हमारी कॉन्शियसनेस में जाके बैठ गई। दिल माना कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में कॉन्शियसनेस, दिल को ही कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं, हिंदी में अंतरात्मा भी कहते हैं। तो ये जो है हमारी, ये हमारी कॉन्शियसनेस में बैठ गया जाकर। अब इस कॉन्शियसनेस से हमको क्या करना पड़ेगा, देह और संबंध भी अंदर जाके बैठ गए, बच्चा, युगल, अलौकिक परिवार, ये भी हमारे अंदर कॉन्शियसनेस में जाके बैठ गया। और क्या बैठ गया हमारी कॉन्शियसनेस में जाके? देह का स्वभाव, आलस, मुझे इतनी नींद चाहिए, 8 घंटा नींद चाहिए, 6 घंटा नींद चाहिए, चाहिए, अलबेलापन कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत टाइम पड़ा है, बाबा तो कहता ही रहता है ना, अलबेलापन, शक, अनुमान, चिंता, चिंता अंदर बैठी है, कॉन्शियसनेस अंदर बैठी है, भय अंदर बैठा हुआ है, क्या होगा, ये नहीं, ये चीज मुझे नहीं मिले तो क्या होगा, वो मुझसे रूठ गया है, रूठ गई तो क्या होगा, है ना, ये अंदर कॉन्शियसनेस दिल में बैठी है। ये बात देखे पदार्थ, थोड़ी सी चीज हमारी खराब हो जाए, हमारी कार खराब हो जाए, हमारी कोई चीज कपड़े खराब हो जाए, कपड़े पे दाग पड़ जाए, वही कौन सा, वही उस पर बुद्धि जाती रहती है। ये चार बातें हमारी कॉन्शियसनेस में बैठी है, दिल में बैठी है। तो ऐसी दिल में बाबा आएगा क्या, मुझे बताओ। अभी आपने पीछे संदेह की मुरली सुनी थी ना, तो बाबा ने क्या कहा था, परहेज रखनी है। कौन सी परहेज? संगम की परहेज क्या है? पहली पहली परहेज क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वो दिल में इतने सारे लोग बैठे हैं पहले से ही, तो बाबा कैसे अंदर आएगा? क्योंकि जिसकी, जो दिल में बैठा उसकी हम बात मानते हैं, वो हमें कुछ भी कहता है उसको हम करके ही दिखाते हैं, लौकिक अलौकिक की हम बात मान के करके दिखाते हैं, क्योंकि उसको खुश करना है। अब पर बाबा को पसंद नहीं है अंदर कोई भी बैठा हो, बाबा कहते पहले इनको निकालो तो फिर मैं आऊं। जो दिल में बाबा आएगा तो फिर दिल में बाबा की बात याद रहेगी और तब उसको हम मानेंगे भी, करेंगे भी, नहीं ऐसा होगा? अब दिल में मेरे बच्चे बैठे हैं, दिल में मेरी युगल बैठी है, दिल में मेरे दोस्त बैठे हैं, तो उनकी बात तो मानते हैं, किंतु बाबा तो, अगर बाबा बैठा होता बाबा की मानते। इसलिए मुरली सुनते भी हमको याद कहां रहती है? रहती है क्या याद? रहती है, रहती है याद, बोलो याद रहती है। दूसरा कोई व्यक्ति हमें कोई इंपॉर्टेंट, इसको हम इंपॉर्टेंट समझते, उसकी एक बात कब 10 साल पहले गई उसकी अभी तक याद रहती है, 10 साल पहले उसने मेरे को ये कहा था, बाबा की बात याद रहती है ऐसे? 10 साल पहले बाबा ने मुझे कहा था, कल बाबा ने कहा था, परसों बाबा ने मुझे वरदान दिया था, याद रहता है? इसका मतलब अभी तक हमने बाबा को दिल में बिठाया नहीं है। और बाबा की कंडीशन क्या है दिल में बैठने की? कंडीशन है बाबा की कि बच्चे पहले इनको निकालो फिर मैं आऊं। तो बाबा की अभी हमें पता है कि ये देह जाने वाली है, देह के संबंध काम आने वाले नहीं है, देह के स्वभाव संस्कार, जब देह जाने वाली देह के स्वभाव संस्कार भी काम के नहीं है, और देह के पदार्थ तो सब जाने ही वाले। तो इन चारों को अपने आप से बातें कर करके, बार बार बात करके निकालो, इसे कहते हैं रियलाइजेशन। रियलाइज, रियलाइज करो कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरे संबंध क्या इनसे हैं या उनसे हैं, जब मेरा जाने का समय है क्या मेरे साथ ये लोग जाएंगे, क्या मेरे काम आएंगे, ये सब चीजें मेरे साथ जाएंगी। तो बार बार चलते फिरते उठते बैठते ये चिंतन, मनन चिंतन मंथन सिमरण, ये 5 स्टेप हैं। मनन चिंतन, जो बाबा कहता है उसको मनन करें, बार बार बुद्धि में उसको जुगाली करें, है ना, चिंतन करें, फिर उसको मंथन करें। जैसे सागर से क्या होता है, सागर से पानी, सागर में पानी खारा होता है, सागर से धूप लगती है ना उसको, तो पानी उड़ता है, बादल बनते हैं, किंतु बादल का पानी हम बादल को पी सकते हैं क्या? बादल से हमारी प्यास बुझेगी क्या? बुझेगी? ऊपर जाओ बादल पी के आ जाओ, प्यास बुझ जाएगी हमारी? बादल फिर टकराते हैं पहाड़ से, पहाड़ से टकरा के वहां बरसात होती है, बरसात फिर बर्फ बन जाती है, और बर्फ फिर नदी में आती है, बर्फ पिघल के नदी में आती है, और फिर नदी के पानी को भी हम साफ करके पीते हैं। यही प्रोसेस है बाबा की मुरली सुनने का। बाबा की मुरली सुनी, उसको मनन करो, योग अग्नि, अग्नि उसी पे योग लगाओ, उसी को गहराई में चले जाओ, उड़े बादल बने, फिर बादल पहाड़ से टकराते हैं, जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं, जो बाबा ने आज कहा समस्या में ना पहाड़, ठीक है, उससे फिर उसको चिंतन करो, मंथन करो, बार बार टकराते हैं, फिर उससे बारिश होती है, फिर उसको सिमरण में, बारिश हो रही है ना, सिमरण में ले आओ, और फिर जो वो बादल वो पानी नदी नदी में जब आता है तो पीने लायक बनता है, तो स्मृति स्वरूप, फिर हम उसका स्वरूप बनते। तो मनन चिंतन मंथन सिमरण और स्मृति स्वरूप, स्मृति में हमारे जीवन में जो बाबा ने कहा वो हमारे जीवन का पार्ट बन गया। तो जब ऐसा हम करते हैं तो हमारे जीवन का अंग, ये ज्ञान, हमारे ज्ञान ना समझ, वो समझ हमारे जीवन का अंग बन जाती है, हमारा अपना खजाना बन जाती है, और फिर ये हमारी बुद्धि से समझ आ जाती है, ये मैं सिर्फ आत्मा हूं, बाबा मेरा है, ABCD, तब समझ में आता है, तब हम उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनते हैं। और जब ऐसा होता है तो फिर हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, जो 15 से जैसे जैसे ABCD को रियलाइज करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी 8 होती है, शांति आने लगती है, 6 हुई तो प्यार की अनुभूति, रूहानी प्यार की अनुभूति होने लगती है, 4 हुई तो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है, 2 हो गई तो आनंद की अनुभूति होने लगती है, अर्थात हमारी कॉन्शियसनेस जैसे जैसे बदलती जाती है वैसे वैसे हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर होती है, अर्थात हम इससे ऊपर, इस दुनिया से ऊपर उठने लगते हैं। जब दो होती है तो हम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं, बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं, 1 होती तो परम धाम में पहुंच जाते हैं। तो वो जब हमारी कॉन्शियसनेस हमारी 2 संकल्पों वाली हो जाती है, 1 संकल्प वाली होती है, तो फिर बाबा की जो बात बाबा ने कही हमें याद रहती है, स्मृति, उसके स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, और फिर जो बाबा का कहना और हमारा करना सेम हो जाता है, वो पावर भी हमारे अंदर, शक्ति भी आ जाती है उसको, उसको धारण करने की, और समझ समझ आती है, फिर उसकी धारण करने की शक्ति आ जाती है। तो जब इस तरह से हम करते हैं तो हमारी स्थिति क्या बन जाती है, बाबा का कहना और हमारा करना एक होता जाता है, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, और यही बाबा की याद है। जैसे जैसे हम बाबा की याद में टिकते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिक 7 अंगों 8 अंगों को एनर्जी ज्यादा जाने लगती है, टीम हमारी मुरली से ही हमारी टीम, हमारे जो मन है पॉजिटिव होता जाता है, वो सातों एनर्जी बॉडी के अंगों में जाने लगती है और हमारी बीमारियां, बीमारियां क्यों होती हैं? जब अंगों में बीमारियां, हमारे एनर्जी कम होती है तो बीमारियां कहलाती हैं। वहां डिस ईज, लॉस ऑफ ईज पैदा होती है, उसी को हम बीमारी कहते हैं। तो जब हम इस तरह से अपने आप को परिवर्तन करते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जो बीमारी, जो हमारे विकर्मों के कारण हमारे अंगों में बीमारी पैदा होती है, वो बीमारियां भी कम होती जाती हैं और दवाई भी हमें ठीक काम करना शुरू कर देती है। ओम शांति। हम सभी एक मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर आज इंटरनेशनल योग होगा, सभी एक मिनट बाबा को याद करेंगे। इसी स्थिति में बैठेंगे कि एक बाबा दूसरा ना कोई।
अशांति